ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 119वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी 2025 को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए विकास की कई अद्यतन जानकारियां दी और उनके महत्व को भी रेखांकित किया। अशोक जी, मन की बात के 119वें अंक में प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों को छुआ है, क्या आप आरंभ में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करना चाहेंगे?
प्रधानमंत्री की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो देश में जो मूड चल रहा होता है उसको बड़ी बात ही भांप लेते हैं। उनको मालूम है कि आजकल चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और क्रिकेट की बात होती है और क्रिकेट में सेंचुरी का क्या महत्व होता है। ये कहकर उन्होंने कुछ देर के लिए तो लोगों को चौंका दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत ने स्पेस में यानी अंतरिक्ष में जो शानदार सेंचुरी बनाई है वो उनकी बात करने वाले हैं, ना कि क्रिकेट की। क्योंकि पिछले महीने देश में इसरो ने, जो हमारी स्पेस एजेंसी है, उसके 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो साक्षी बने थे। और ये केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इससे स्पेस विज्ञान में नित नई ऊंचाइयों को छूने का जो भारत का संकल्प है उसके बारे में भी पता चलता है। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो भारत की अंतरिक्ष यात्रा की जो शुरुआत है वो बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी, और कहा कि पर इसमें कदम कदम पर बहुत चुनौतियां भी थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर विजय प्राप्त करते हुए आगे भी बढ़े और समय के साथ साथ अंतरिक्ष की इस उड़ान में हमारी सफलताओं की सूची भी काफी लंबी होती चलेगी। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि जो लॉन्च व्हीकल होता है, चंद्रयान की यात्रा की सफलता हो या मंगलयान हो या आदित्य L1 हो, या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की अभूतपूर्व मिशन हो, तो इसरो को जो ये सफलताएं मिली हैं ये पिछले 10 वर्षों से ही करीब 460 सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं। तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा प्रधानमंत्री ने की। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय जिसकी ओर उन्होंने आज विशेष ध्यान दिलाया देश का, वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी हाल ही में वो पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक विश्व सम्मेलन में भाग लेने पेरिस गए थे, और वहाँ दुनिया ने इस क्षेत्र में भारत की प्रगति की भी खूब सराहना की। हमारे देश के लोग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिले। और पिछली बार मन की बात के 118वें एपिसोड में जो बात हुई थी तो उस समय भी उन्होंने इसके बारे में बात की थी।
और जैसा आपने पहले विस्तार से बताया है, हमारे अंतरिक्ष की हमारी जो उपलब्धियां हैं उसका उल्लेख किया प्रधानमंत्री जी ने। और जब विज्ञान की चर्चा हो रही है तो हम विज्ञान के एक और बिंदु पर आते हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नेशनल साइंस डे जो अभी आने वाला है उसके बारे में भी उन्होंने एक नया आइडिया दिया है, उस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप?
बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने जा रहे हैं, और जो हमारे देश के युवा हैं, बच्चे हैं, उनकी विज्ञान में दिलचस्पी और जुनून जो होना चाहिए, तो उसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिसे आप एक दिन वैज्ञानिक के रूप में रह सकते हैं। यानी उन्होंने युवा पीढ़ी को आह्वान किया और बच्चों को भी कहा कि आप अपना एक दिन एक वैज्ञानिक के रूप में बिताएं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी मर्जी के कोई भी एक दिन चुन लें, और उन दिनों में आप जो है किसी ना किसी एक जो हमारे विज्ञान से जुड़े हुए हमारे संस्थान हैं उनमें भी जाइए। उनमें जाएंगे तो इससे आपकी जो रुचि है विज्ञान में और बढ़ेगी। तो ये एक तरह से आह्वान किया उन्होंने देश के युवाओं को कि वो एक दिन अपने आप को वैज्ञानिक समझे।
जी, इससे विज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ाने में आम लोगों के बीच या युवाओं के बीच काफी सहायता मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज महिला दिवस पर उन्होंने कुछ उल्लेख किया उसके बारे में, जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो है उनके एक्स और इंस्टाग्राम वगैरह उस पर भी वो बोल रहे हैं कि कुछ जो प्रेरणा दे सकने वाली महिलाएं हैं उनको एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे?
प्रधानमंत्री हर अपने मन की बात की एपिसोड में कुछ ना कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं और उसका साझा करते हैं देश की जनता के साथ। तो इसी कड़ी में उन्होंने जब कहा कि अगले महीने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये हमारी नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर भी होता है, और उन्होंने कहा कि देवी महात्म्य में कहा गया है कि विद्या, यानी ये उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा जिसका अर्थ था कि सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। मैं समझता हूँ कि नारी शक्ति को एक प्रेरणा और सम्मान देने का जो एक उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया वो सचमुच में ही सराहनीय है, और हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि है, ये प्रधानमंत्री ने इस ओर भी इशारा किया। तो उन्होंने फिर कहा कि इस दौरान इस बार महिला दिवस पर फिर उन्होंने अपना एक नई पहल की ओर इशारा किया और कहा कि मैं ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। यानी इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स है, इंस्टाग्राम के अकाउंट, उनको देश की कुछ प्रेरणादायक महिलाओं को सौंप देंगे। यानी एक दिन के लिए प्रधानमंत्री के ये जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, ये कुछ प्रमुख प्रभावशाली प्रेरणादायक महिलाएं ही उसको चलाएंगी और वे 8 मार्च को अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा भी करेंगी। तो ये एक अनूठी पहल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी सशक्तिकरण की दृष्टि से भी प्रधानमंत्री ने जो बात कही, मैं समझता हूँ वो देश की महिलाओं को एक संदेश भी देने का कोशिश की गई है।
और जो खेल से बातें उन्होंने कही हैं, जो उत्तराखंड के लिए कहा है कि बुनियाद वहां पर बहुत अच्छी बन सकती है खिलाड़ियों के लिए, उत्तराखंड के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है, उस पर आगे क्या क्या होने वाला है उसकी कुछ उन्होंने जानकारी दी है।
खेलों के बारे में प्रधानमंत्री सदा से ही अपने मन की बात की हर एपिसोड में कुछ ना कुछ चर्चा अवश्य करते हैं, चाहे जब हम मेडल जीतते हैं तब है, चाहे हम ओलंपिक में जाते हैं तब है। तो इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेलों का जो एक बड़ा रोमांच का आनंद उठाया गया, क्योंकि 11,000 से अधिक एथलीट इसमें शानदार रूप से जिन्होंने प्रदर्शन किया, तो ये जो आयोजन हुआ, पर ये आयोजन उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, तो उसने उत्तराखंड का एक नया स्वरूप पेश किया। क्योंकि आमतौर पर धारणा क्या है कि उत्तराखंड तो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर खेलों के मैदान नहीं होंगे, तो खेल की कोई प्रतियोगिता वहां कैसे आयोजित की जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि अब तो उत्तराखंड एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण एक खेलों की ताकत के रूप में उभर रहा है। इस बार उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनका यही तो स्पोर्ट्स की पावर है, यानी जो व्यक्तिगत रूप से और इंडिविजुअल और कम्युनिटीज के साथ साथ पूरे राज्य का भी कायाकल्प कर देती है। तो इससे आने वाली पीढ़ियां प्रभावित होती हैं, प्रेरित होती हैं, और उसके साथ साथ जो कल्चर का एक्सेलेंस भी बढ़ता है, क्योंकि आयोजन उत्तराखंड में हुआ इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी कड़ी में उन्होंने आज एक और अनूठा प्रयोग किया कि उन्होंने जो है देश भर में इन खेलों के कुछ यादगार प्रदर्शनों की भी चर्चा की, और इसमें सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली सर्विसेज की टीम को भी उन्होंने बधाई दी और राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी की भी सराहना की। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या थी कि उन्होंने आज कुछ खिलाड़ियों की उनकी ही जवानी आज चर्चा भी की। उन्होंने बहुत ही रोचक विषय पर बात की, यानी ओबेसिटी, मोटापा, उस विषय पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री उन खिलाड़ियों को भी ले आए जिन्होंने मेडल जीते हैं, और उसमें जिन दो लोगों की, कुछ लोगों की हमने बात की तो उसमें नीरज चोपड़ा ने भी बात की, उन्होंने भी ओबेसिटी के बारे में बात की और कहा कि ये महत्वपूर्ण कितना है, ये वो स्वयं जो खिलाड़ी रहे हैं वो इसको जान सकते हैं। तो नीरज चोपड़ा का कहना था कि जब उन्होंने शुरुआत में खेलना शुरू किया तो वो भी काफी मोटे थे, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ अच्छा खाना किया तो इससे उनको बहुत सहायता मिली। तो ये जो एक संदेश दिया गया खिलाड़ियों के माध्यम से युवा पीढ़ी को स्वस्थ रहने का और मोटापे से बचने के लिए, अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने यहाँ तक भी कहा कि जो हम खाने का तेल खरीदते हैं, एडिबल ऑयल लेते हैं, तो संकल्प करें सभी परिवार कि वो 10% कम खरीदे। तो जब 10% तेल कम आएगा तो फिर तली हुई चीजों का खाना भी कम हो जाएगा और इसका अर्थ ये भी हुआ कि जो ओबेसिटी है उसका जो बहुत बड़ा असर है कि वो इस तेल के कारण है, और इस वजह से इन चीजों से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो खेलों के साथ साथ फिर उन्होंने एक और जानी मानी एथलीट निखत जरीन को भी लाए चर्चा में, और उन्होंने भी अपना अनुभव बताया कि कैसे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन होने के लिए उन्होंने भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा और कैसे मोटापा ना हो। तो देशवासियों को जो आज मोटापे से बचने का एक संदेश था, प्रधानमंत्री ने उसको आज खिलाड़ियों के माध्यम से देश के सामने रखा।
और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ वनस्पति और जीव जंतुओं का एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम है, और ये वन्य जीव हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति में रचे बसे हुए हैं। यहाँ तक कि संस्कृति की बात करें तो जो भारतीय धर्म है उनमें भी कई बार हम देखते हैं जीव जंतुओं और प्रकृति का उल्लेख मिलता है। इस पर आप कुछ विस्तार से बताना चाहेंगे?
बिल्कुल, स्वास्थ्य के बाद, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर एपिसोड में मन की बात में प्रधानमंत्री जो एक कुदरत है, नेचर है, उससे भी जुड़े हुए विषयों पर हमेशा बात करते हैं। और जो कुछ उन्होंने एक जानवरों के नाम लिए, एशियाटिक लॉयन की बात की, यानी इस तरह के कुछ जानवरों की जब वो चर्चा कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री क्या इशारा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो जानवर हैं, जीव हैं, ये दुनिया में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि समानता है तो वनस्पति और जीव जंतुओं का एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोसिस्टम है हमारे देश में। तो इस ओर इशारा किया, जैसे मैंने कहा कि हमेशा इकोसिस्टम के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में भी लगातार प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में ये चर्चा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वन्य जीव जो है ये हमारे इतिहास और संस्कृति में रचे बसे हुए हैं, यानी कई जीव जंतु तो हमारे देवी देवताओं की सवारी के तौर पर भी परंपरा तरीके से पूजे भी जाते हैं और देखे भी जाते हैं। यानी मध्य भारत में तो कई जनजातियां बागेश्वर की पूजा करती हैं, यानी महाराष्ट्र में घोवा की पूजन की परंपरा रही है, भगवान अयप्पा को भी कभी बाघ से बहुत गहरा संबंध है, सुंदरवन में बोन बीवी की पूजा अर्चना होती है जिनकी सवारी बाघ है, और कर्नाटक के फुली वेशा, तमिलनाडु के पुली और केरला के पुलकली जैसे कई कल्चरल डांसेस हैं जो नेचर और वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इतनी जानकारी उपलब्ध कराना साधारण देशवासी को ये मन की बात के द्वारा ही हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी भाई बहनों का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़े कार्यों में लगातार बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं और ये उनके स्वभाव में है, उनकी संस्कृति में है। और कर्नाटका के बीआरटी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी लगातार बढ़ रही है, इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है, क्रेडिट जो है, सोलिगा ट्राइब को जाता है जो बाघ की पूजा करते हैं। यानी इनके कारण इस क्षेत्र में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना के बराबर होता है। और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि गुजरात में भी लोगों ने गिर में एशियाटिक लायंस की सुरक्षा और संरक्षण के महत्वपूर्ण काम में वो योगदान करते हैं, और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि प्रकृति के साथ कोएग्जिस्टेंस आखिर क्या होता है। इन प्रयासों के कारण ही पिछले कई वर्षों में बाघ, तेंदुए, एशियाटिक लायन, राइनो, बारहसिंगा, इनकी आबादी फिर से तेजी से बढ़नी शुरू हुई है। और भारत में वन्य जीवों की जो डाइवर्सिटी कितनी खूबसूरत है, ये भी गौर करने लायक कि एशियाटिक लायंस तो देश के पश्चिम हिस्से में पाए जाते हैं, जबकि टाइगर का क्षेत्र पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत है, वहीं राइनो पूर्वोत्तर में मिलते हैं। यानी भारत का हर हिस्सा न केवल प्रकृति के लिए संवेदनशील है बल्कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी प्रतिबद्ध है। और अगले महीने की शुरुआत में जब हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाएंगे तो मेरा आग्रह है, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब लोग देशवासी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन करें, उसका हौसला बढ़ाएं।
अशोक जी, सुर्खियों में कार्यक्रम में आने और बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 119वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।